अरे सर वो लपड़ कहाँ गया?
भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय श्रील रूप गोस्वामी तिरुभापति की जय। जय श्री गौरीदास पंडित तिरुभापति की जय। समवत भक्तविंद की जय। निताय गौर प्रमानंदे नाम श्रेष्ठ मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तिष्ठग्रजं मरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डगिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तजैश्च प्रसितकृपयां श्रीगुरुं समनतो यस्मि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पैतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीना अपराधलक्षे क्षिप्रादितमादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ने वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दां वृन्दे नमस्ते चरणारविंदम आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभ दिब्ब छविसुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते, चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। सा सुख निविद चिता स्थलबुद्ध स्तन भाव अपजीत रुचिला कृष्ण सारस्त दियं वैतन तु कृपांगजस्तत्त दीपं पुराणं तमखिल ब्रजिग्नां व्यससो ननतो यस्मि भवे भवे यथा भक्तिपादस्तव जायते तथा कुरुष देवसनाथस्तनजत प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनां प्रणामं दुःख शमनस्तु तं नमामि हरि परम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रयेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयाम् भागवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 4 श्लोक नंबर 29। तस्याम् रात्र्याम् व्यतीतायाम् कंसः आहूय मन्त्रिणाम् तेभ्यम् आचष्टम् तत् सर्वं जागुक्तं योगनिद्रया। तैस्यां रात्र्यां व्यतीतायां कंस आहूय मन्त्रिणां तेभ्याचष्ट तत्सर्वं जदुक्तं योगनिद्रया। तैस्यां रात्र्यां व्यतीतायां कंस आहूय मन्त्रिणां तेभ्याचष्ट तत्सर्वं जदुक्तं योगनिद्रया। तैस्यां रात्र्यां व्यतीतायां कंस आहूय मन्त्रिणां तेभ्याचष्ट तत्सर्वं जदुक्तं योगनिद्रया। विचाकर कंस कंस ने आहूय बुलाकर मंत्रिण सारे मंत्रियों को तेभ्य उन्हें आचष्ट सूचित किया सर्वम सब जातुक्तम जो कहा गया था कंसों का वध करने वाला अन्यत्र कहीं है योग निद्रया योग माया देवी दुर्गा के द्वारा अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। रात बीतने पर कंस ने अपने सारे मंत्रियों को बुलाकर वह सब उन्हें बतलाया जो योग माया ने कहा था, जिसने वह रहस्य बताया था कि कंस को मारने वाला कोई अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है। तात्पर्य, चंडी नामक वैदिक शास्त्र में भगवान की शक्ति माया को निद्रा कहा गया है। दुर्गा देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण समास्थितः। योगमाया तथा महामाया की शक्ति जीवों को इस जगत में अज्ञान रूपी ग्रहण अंधकार में सुलाए रखती है। योगमाया अर्थात देवी दुर्गा ने कंस को कृष्ण के जन्म के विषय में अंधकार में रखा और वह कहकर उसे भ्रांत किया कि उसका शत्रु कृष्ण अन्यत्र जन्म ले चुका है। कृष्ण तो देवकी के पुत्रों में उत्पन्न हुए थे, किंतु भगवान की पूर्व योजना के अनुसार जिसकी भविष्यवाणी ब्रह्मा ने की थी, वह माता यशोदा तथा नंद महाराज एवं अन्य घनिष्ठ मित्रों तथा भक्तों को 11 वर्ष तक आनंद प्रदान करने के लिए वृंदावन गए। उसके बाद वह कंस का वध करने लौटे, क्योंकि कंस इसे नहीं जानता था। इसलिए उसने योगमाया का इस कथन पर विश्वास कर लिया कि कृष्ण अन्यत्र जन्म ले चुका है, देवकी से उत्पन्न नहीं हुआ। तो माया बड़ो बलवान, यहाँ चंडी नामक शास्त्र को दिया है। जो हम लोग चंडी पर ऐसे कुछ बोलते हैं उनको, जा देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु गान रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। ऐसा करके चंडी पाठ होता है, बहुत सारे है। तो वहाँ पर ये चंडी को सब कुछ से श्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ तक भी कहते हैं कि चंडी से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबका जन्म भी हुआ है, इतना ही चंडी शास्त्र का प्रखरता दिया गया है। वास्तव में शास्त्र का इसमें किसी प्रकार का कोई दोषारोप नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, श्रुति शास्त्रादि निंदनम, हम कहते हैं 10 अपराध में अपराध आता है। सागर बोले ये शास्त्रों का हम निंदा करेंगे तो जितना सारे शास्त्रों का रचना कर रहे कौन है? व्यासदेव है। और व्यासदेव क्या है? नारायण साक्षात। तो जीव का योग्यता का हिसाब से उन्होंने शास्त्रों का रचना किया। इसमें शास्त्रों का रचनाकारी का कोई दोष नहीं है, दोष हमारा जजमेंट देने के लिए। हम किसी विषय पर निष्कर्ष निकालने से पहले हम उसको जजमेंट दे देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाते हैं जी, हमारा जो दिया वही सही है। पहले विचार करना आवश्यक रहता है, भाई ऐसा क्यों कहा गया है, किस लिए कहा गया है और कहने का तात्पर्य क्या है। सरासरी किसी भी शास्त्र का निंदा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रकार का जीव है। तमोगुण जीव है, जीव है, उससे भी नीचे वाला भी जीव है। तो उस जीव को अगर डायरेक्ट 56 भोग खिलाया जाए खाएगा? तो उसको एक खेचड़ी इचड़ी देकर के उसको लाना पड़ेगा। तो उसके लिए यही सब शास्त्र किया गया है। व्यासदेव हमसे बुद्धिमान होंगे कि मूर्ख होगा? बुद्धिमान होगा नाम से। इन्होंने जानते थे कि किस व्यक्ति के किस के मतलब किस प्रकार जीव के लिए कौन सा शास्त्र जरूरी है। एकाएक तो डिग्री कोर्स तो दे नहीं सकता है, क्योंकि तो नर्सरी डालने के लिए चॉकलेट दिखाना ही पड़ेगा। जब वो चॉकलेट देखेगा तो नर्सरी स्कूल आराम से जाएगा, मम्मी आज चॉकलेट दिया, दिखाएगा घर में आला करके, ये चॉकलेट है भाई, दुर्गा सब कुछ है, कितना हाथ है, कितना ये है, क्या अस्त्र खड़ा है। वही दुर्गा को जो प्रणाम करेगा तो दुर्गा क्या बोलेगा? अगर सुकृति संपन्न जीव सुकृति भाव में दुर्गा को प्रणाम करता है तो दुर्गा हरि भक्ति का प्रेरणा देता है। बृहद भागवत मित्र जो ग्रंथ है उसमें कहा गया है, कामाख्या देवी ने उस ब्राह्मण को अष्टादश अक्षर मंत्र प्रदान किया। कैसे किया? क्योंकि इस मंत्र का जो रक्षा करता है वो दुर्गा है। तो दुर्गा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यहां पर कहते हैं प्रभुपाद जी ने दिया है जे ये जोग माया व महामाया, इन्होंने बा शब्द का उच्चारण किया। बा शब्द जिसको क्या कहते हैं? सो वत्सल से बोलते हैं, अथवा मैं और आप, वो बा हम दोनों सेम है। किसने सेम शब्द ये किया है? क्योंकि रित्य अर्थे जत प्रत्यते न प्रतीत चात्मनि तलविद्या आत्मनो माया जथा भाष जथा तमः। चौदह श्लोक का द्वितीय श्लोक है श्रीमद्भागवत का। स्वरूप शक्ति छोड़ के जिसका अस्तित्व तो नहीं है, और जहां पर स्वरूप शक्ति है वहां उसको अस्तित्व तो नहीं है। जैसे मेरा छाया, अगर मैं नहीं हूं तो छाया कहां से आएगा? अगर कोई छाया को देखेगा तो सोचना पड़ेगा कोई व्यक्ति जरूर है, नहीं तो छाया कहां से आएगा? जैसे सूर्यों का आभास, यहां सूर्य ग्रहण है क्या? लेकिन हम लोग क्या और सूर्य उग गया बोलता है कि नहीं, ये आभास है। रोड में जाओगे तो क्या देखोगे? सूर्य किरण, वो प्रतिफलन है। इस प्रकार माया का ये आभास जो चित जगत रूपी सूर्य का जो आभास है जड़ जगत है, और इसको जो प्रकाश है वो प्रकृति जगत है। ये माया को समझना, इसे जोग माया और महामाया। माया कितना है? तीन। तो आप लोग से ऊपर जाना पड़ेगा ना, नहीं जाओ तो समझोगे नहीं। एक जोग माया, एक गुण माया, एक जीव माया। भक्ति ठाकुर जैव धर्म वहां पढ़ोगे तो मिलेगा। जोग माया जो भगवान का अंतरंग शक्ति है, महामाया जड़ शक्ति का दुर्गा है, जीव माया हम सब है ना, ये जीव माया है। बोलो हम लोग किसी को मोहित तो करते कि नहीं करते हैं? हमें देख के भी कोई मोहित तो होता है ना, तो हम भी एक माया है कि नहीं है? ये तीन माया का संसार चलता है। ते भगवान का एक वृत्ति है जिसका नाम है स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति का तीन विभेद है, अंतरंगा, बहिरंगा तड़स्ता, बराबर। स्वरूप शक्ति का तीन वृत्ति है, संबित, संधिनी, हालदिनी। तो एक ही वस्तु का छह भाग हुआ। जब स्वरूप शक्ति क्या अंतरंग शक्ति में क्रिया करता है उसका वृत्ति, तो संधिनी के द्वारा क्या होता है, संबंध स्थापन होता है अप्राकृत जगत का। संबित के द्वारा ज्ञान होता है, और जो हालदिनी शक्ति है वो हालदिनी शक्ति के द्वारा क्या होता है, आनंद प्रदान करता है। स्वरूप शक्ति का वृत्ति जब अंतरा शक्ति में प्रयोग किया होता है, तब वही स्वरूप शक्ति का तीन वृत्ति जब तटस्थ शक्ति में क्रिया होता है तो क्या होता है, जीव का गठन के लिए संधिनी शक्ति होता है। माँ बाप भाई बहन आप हम जो संपर्क है ये संधिनी काम करता है, और हम जो आनंद उपभोग करता है वो हालदिनी क्रिया होता है। इसी प्रकार यही स्वरूप शक्ति का वित्री जब बहिरंग शक्ति में क्रियाशील होता है तो क्या मिलता है, माइक जगत को उत्पन्न, माइक वस्तु का साथ संपर्क और जड़ आनंद। ये माया का चक्कर है, माया कोई सामान्य वस्तु नहीं है और माया का चक्कर भी कोई सामान्य नहीं है। तो माया को चक्कर का अगर हम समझ लेते हैं तो माया में हम गिरेंगे नहीं। ये दुर्गा ऐसी कहते जा देवी सर्वभूत यशु गान रूप गान है कि नहीं है, जोड़ गान है कि नहीं है। तो भाई गान जो हम लोग वर्णन किया स्वरूप शक्ति वृत्ति अंतरंग शक्ति जो ज्ञान जुड़ी गान, वो जुड़ी गान दुर्गा है कि नहीं है, तो चंडी खराब है, चंडी शास्त्र खराब है। इसलिए कभी भी कोई भी शास्त्र का निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कोई सामान्य वस्तु नहीं है, वो शास्त्र है, वो ज्ञान को दुरुभूत करेगा। लेकिन धीरे धीरे जब हम इससे आगे जाएंगे तो हमको रियली शास्त्र का जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं जड़ विद्या जत मायार वैभव जीव के करे गाधा। ये जड़ विद्या जो है ना, ये जीव को गाधा बना के रख देगा। जड़ विद्या जत मायार वैभव जीव को करे गाधा। हम कुछ विचार नहीं करते हैं, इसलिए यहां पर दिया गया है ये वैदिक शास्त्र में जो माया उसका बारे में ये सब कहा गया है। ये जोगमाया कंस को भी सुला कर रखा, तुमको मालूम नहीं होने दिया जब कृष्ण देवकी और वसुदेव से जन्म लिया बोलते वासुदेव रूप में, उनको छिपा कर रखा तो उसको मोहित तो किया कंस को। ये महामाया का काम है, क्योंकि जोगमाया कभी भी बद्ध जीव पर क्रियाशील नहीं होता है, कभी भी क्रियाशील बद्ध जीव पर नहीं करेगा। और महामाया कभी भी शुद्ध जीव पर आवरण नहीं डालेगा, उसका क्षमता नहीं है। इसलिए महामाया जो है कंस के हाथ में आया, जोगमाया अगर कंस के हाथ में आते थे तो कंस शुद्ध हो जाता था। माया सीता को रावण ने हरण किया, शुद्ध सीता को अगर हरण करते थे शुद्ध सीता को स्पर्श कर सकते थे क्या, देख सकते क्या? भगवान मायामय जीव का सन्मुख में स्वयं को आविर्भूत तो नहीं करते हैं, लेकिन वैष्णव वृंद व गुरुवर्ग इतना कृपालु होता है, बद्ध जीवों को कृपा करने के लिए भगवान का साक्षात्कार करा देते हैं। कैसे साक्षात्कार कराते हैं, ठाकुर जी का रूप में, विग्रह का रूप में, देखो ये भगवान है, इसको अगर हम विश्वास करके चले, बोलो विश्वास, आप विश्वास करो चाहे ना करो भगवान है। आपका और हमारा विश्वास पर कोई वस्तु स्थिर नहीं होता है, जहां हम विश्वास करते हैं हम इसको विश्वास नहीं करते हैं, है ना नास्तिक लोग, बोले हम इसको विश्वास नहीं करते। काला पहाड़ जगन्नाथ मंदिर को उठा के लेके बहुत बार विध्वंस किया, तो उनको विश्वास नहीं था, इसका मतलब जगन्नाथ नहीं था क्या? ये महामाया का आवरण जितना ज्यादा होता है उतना जीव अविश्वासी बन जाता है। इसलिए ठाकुर जी को हमारे सामने गौड़ियों गुरुवर्ग अभिरूप तो करा करके, क्योंकि हम तो साक्षात्कार नहीं सकते हैं, भगवान का साक्षात्कार हमसे होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें शुद्ध बनना पड़ेगा। तो जब तक हम अशुद्ध रहते हैं तो हम अशुद्ध समय में भगवान ने कृपा परवश होकर के विग्रह रूप में आविर्भूत हुए हैं। इसलिए कहते हैं प्रतिमा न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप प्रतिमा नहीं है, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। जो व्यक्ति प्रतिमा को निंदा करते हो पाखंड है, पाखंड, उसको मुख भी दर्शन नहीं करना चाहिए, दुर्भाग्य जाना चाहिए। अरे शास्त्र में यहां तक कहते अगर उसको दर्शन भी हो जाए तो जिस कपड़ा में उसी कपड़ा में जाके गंगा में कूद मारो, अशुद्ध हो जाओगे। ये निंदा करे व्यक्ति का कभी मुख दर्शन नहीं करना चाहिए। इसलिए महामाया ने क्या कर दिया, कंसों को भ्रांत करके रखा। जोगमाया ने क्या किया, जोगमाया ने एक काम किया, वासुदेव कृष्ण को नंद कृष्ण से मिला दिया। ये जोगमाया का काम है। नंदात मजो पशुपांग जायो एनात मजो, भागवत में बहुत सारे जगह में शब्द दिया गया है। तो वसुदेव अगर नंदनंदन को दर्शन करते थे तो उनका विभ्रम होता था, अरे दो कृष्ण कहां से आ गया। इसलिए वहां पर जोगमाया का कार्य हो, जोगमाया ने वसुदेव को मोहित करके रखा, वहां महामाया का कार्य नहीं हुआ। वसुदेव क्या देखा, ऑनली लड़की हुआ है, खुश हो गया, चलो उठा के लेके चला गया। और जोगमाया के द्वारा निद्रित होकर आ गया अपना यशोदा देवी ने। तो जैसे वासुदेव कृष्ण को वहां रखा गया वैसे ही वासुदेव कृष्ण नंद कृष्ण से मिलाप हो गया। और इन्होंने महामाया को लेकर कंस को वंचना किया, कंस ने महामाया ने कंस को भी वंचना कर दिया। अब यहां लास्ट में लिखते हैं ये जिस प्रकार भविष्यवाणी किया था ब्रह्मा के द्वारा, आज में 11 साल तक ब्रज में रहेंगे, तो भगवान ने 12 साल जब ब्रज में रहा, जैसे 12 साल हो गया, 11 साल, 12 नहीं 11, 11 साल कितना महीना है, जैसे हो गया वैसे अक्कूर आया लेने के लिए। और अक्कूर जी जब कृष्ण को लेने के लिए आया तो कृष्ण मथुरा चला गया, कहां तक गया, यमुना नदी का किनारा तक गया, उसको आगे नहीं, क्योंकि वहां पर जो अक्कूर जी का भ्रम हुआ तो अक्कूर जी ने डुबकी मारा यमुना में। जब अक्कूर जी ने यमुना में जब डुबकी मारा तो क्या देखा, वासुदेव को दर्शन किया, महापुरुष को दर्शन किया, नारायण को दर्शन किया। जब बाहर देखते तो वो दोनों भाई देखते रक्तवर है, उसको भ्रम हुआ, मतलब वहां क्या हुआ, ये दोनों भाई वहीं ब्रज में रिटर्न हो गया। और उसका जायगा में क्षत्रिय बलदेव और वासुदेव खड़ा हो गया, लेकिन ये ब्रजवासी को मालूम नहीं पड़ा। ब्रज का वीरह तीन महीना का है, तीन महीना का बाद ब्रजलीला समाप्त हो जाता है, उसका ब्रजलीला कुछ नहीं रहता है। तभी वासुदेव कृष्ण जाके कंस को वध किया, क्योंकि भगवान ने कहते हैं बिंदा पादों में कौन नगद क्षति में एक पाव भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं। उस प्रकार गौर सुंदर भी सिन्यास लेकर के नवद्वीप छोड़ते नहीं है। गौर सुंदर का लीला नवद्वीप अद्याप्य से लीला करे गौर राय सुकृतिर बोले भाई, सुकृतिर बोले लोग देख ही पा रहे पाए। महाप्रभु की लीला नवद्वीप में सदा सर्वदा चलते रहते हैं, महाप्रभु भी नवद्वीप छाप छोड़ के नहीं जाते हैं। गौरव कृष्ण एक कोरी करह भजन, गौरव एक अलग तत्व है, कृष्ण एक अलग तत्व, ऐसा नहीं है, गौरव और कृष्ण दोनों एक ही तत्व है। अलग अलग भजन करने आवश्यक नहीं कि उन्होंने क्या किया, रात को अपना सोने के बाद समस्त मंत्री को बुला करके विचार विमर्श किया, अभी क्या करना चाहिए। तो आगे का विचार आगे होगा, अभी क्या विचार तो अभी हो गया, आज ज्यादा टाइम नहीं क्योंकि आप लोग बहुत लंबा लंबा खींचते हो। रूप गोस्वामी पाद और गौरीदास पंडित दोनों का तिरोभाव दी है। रूप गोस्वामी पाद का प्रणाम मंत्र में लिखते हैं, आदो दानो स्त्रीणी जानते रिदंग जाच पुनः पुनः श्रीमद रूप पदाम भोजो धूलिशा जनमणि जनमणि दुर्गमं सुगमं तत्ते भवेज्यस्य प्रसादत राधा कृष्ण रसो मोगने श्रीमद रूपं नमामितम। राधा कृष्ण रसो मोगने रूप गोस्वामी सदा सर्वदा राधा कृष्ण रस में निमग्न रहते हैं। राधा कृष्ण रसो मोगने श्रीमद रूपं नमामितम। दुर्गमं सुगमं तत्ते भक्ति रसामित सिंधु ग्रंथ दुर्गम है, उनको सुगम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी को अगर चौथा माला जाना तो क्या करना पड़ेगा उसको, चाहे सीढ़ी में चलो चाहे लिफ्ट कूदी मार के जा पाएगा क्या। उसी प्रकार अगर भक्ति रसामित सिंधु समझना है तो क्या करना पड़ेगा, दुर्गम संगमिनी बोल के टीका लिखा है जीव गोस्वामी पाद ने, टीका का नाम है दुर्गम संगमिनी। उस टीका का सहारे से हमें भक्ति रसामृत सिंधु समझना पड़ेगा। इसका भी और एक टीका लिखा है मुकुंददास गोस्वामी, ये कौन है, वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी का शिष्य, इनका भी और एक टीका लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कितना टीका है। जब मैं कब ब्रह्मचारी था, कितना साल हो गया, बहुत साल हो गया था, उस समय ग्रंथ हमको मिला था कलकत्ता में, संस्कृत पुस्तक भवन था, बहुत पुराना बुक था, तो उसमें उसको लेकर आता 50 रुपये लिया था। ये सब बुक अभी नहीं मिलता है, दुर्लभ हो गया, क्योंकि उस समय के जितना सारे किताब है सब लुप्त हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि लोक लोचन तो अंतराल में चला जाएगा, क्योंकि अभी वो सब किताब पढ़ने लायक व्यक्ति ही नहीं है, कौन पढ़ेगा, किसका दिमाग लगाना क्या है, कोई नहीं जाएगा, टाइम कौन बोलता नहीं है, टाइम है हमारे रुचि नहीं है। अगर हमारे पास रुचि हो तो सब कुछ सुलभ है, रुचि होना आवश्यक है। तो भाई रूप गोस्वामी पाद रूप सनातन कहाँ रहते थे, रामकेले में। ये लोग जब महाप्रभु का पदत्व नाम है रूप सनातन, हुसैन शाह का पदत्व नाम है दबीर खास साकर मल्लिक, और उनका बचपन का नाम मैं भूल गया है, अगर याद आकर बोल दूंगा, बहुत अच्छा नाम था उनका दोनों का, मुझे मालूम नहीं था ये है बोल के, जो भी है वो रामकेले में ऐसे गांव में घूम रहे हैं, एक मंदिर निर्माण हो रहा था, ये मस्जिद हुसैन शाह का एक मस्जिद निर्माण हो रहा था, तो हुसैन शाह का बात करने का तरीका था हाथ में बॉडी में हाथ डाल के, देखना किसी किसी के बेडी भी सुनना, इधर सुनता क्यों नहीं है, वो बॉडी में हाथ डाल के बात करते, उसको बैठे बैठे क्या करेगा वो, तो उनका जो मेन आर्किटेक्ट था जो ये मंदिर का मस्जिद का कामकाज देख रहे थे, उनसे वार्तालाप कर रहा था, ऊपर उठा ऊपर था, जैसे हाथ डाल दिया हाथ जोड़ लग गया ऊपर से नीचे गिर, नीचे गिर गया तो ऊपर चला गया मर गया, अरे मंदिर बना ही कैसे। तो उस समय उनका एक सेवक आया, सेवक आया उसको पूछा जो अभी हमारे लिए कुछ सेवा है क्या, एक तो उसका मिस्त्री मर गया मस्जिद बनेगा कैसे, और दूसरा अब आगे पूछ रहा है हमारे लिए कोई सेवा है क्या, वो आया तो तुम वो गाँव में जाओ, जाओ वो गाँव में जाओ, अभी गांव में जाओ, राजा है जो बोला सुना गांव में चला गया, अब वो गांव में आते घूमते रह रहे हैं, घूम रहा है पूरा गांव को घूम रहा है इधर उधर, अभी क्यों आया उसको तो मालूम नहीं, राजा ने भेजा, तो रूप सुना तो आंख में आ गया, देख कितनी घूम कब से घूम रहा है, उसको बुलाया इधर तुम गाँव में क्यों घूम रहा है, मुझे राजा ने भेजा इधर घूम, बोला तुम गाँव में जाओ, बोला अच्छा तो इसको क्या किस लिए भेजा, तो ये मुझे पूछा नहीं, बोला अच्छा पीछे का हिस्ट्री बताओ, बोला ऐसा ऐसा हुआ पूरा स्टोरी बताया, बोलो उसको मिस्त्री चाहिए, मिस्त्री देके भेज दिया, बड़े मिस्त्री के लेके जाओ, तुम राजा को दे दो, राजा खुश हो जाएगा। उन्हें लाके राजा को दिया, मिस्त्री बड़े मिस्त्री आया, आप इसको काम समझाओ। तो तुमको कैसे मालूम? बोला हम गाँव में घूम रहे थे, हमको तो मालूम नहीं था। कुछ दो व्यक्ति था ब्राह्मण, उन्होंने हमको सब सुनने के बाद ये मिस्त्री लेके भेजा। बाहर इतना विद्वान है, बिना सोचे समझे सब कुछ समझ गया। वो दोनों को बुलाओ, वो दोनों को बुला के एक को बोला आप होम मिनिस्टर बन जाओ, दूसरा को बोला फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ। एक अर्थमंत्री और एक गृह मंत्री, दो मंत्री बन गया रूप गोस्वामी। जब महाप्रभु सन्यास लेके नीलाचल गया, नीलाचल का बाद जब उन्होंने वृंदावन जाने के लिए गौड़ देश होकर के आ रहे थे, उस समय राम के लिए गांव में उन्होंने आया, तब रूप गोस्वामी को और सनातन गोस्वामी को मालूम पड़ा महाप्रभु राम के लिए गांव में आए हैं। तो दोनों महापुरुष रात को दसने दुई गोच्छ त्रिनो धरिया दंडवत पड़े महाप्रभु चरणे गया। जो लोग अपना मुंह में दू गुच्छ घास लेकर के महाप्रभु के चरण में दंडवत दूर से प्रणाम कर रहे हैं। तो वहां महाप्रभु ने कहा जो भगवान अत्यंत कृपामय है, आप दोनों पर भगवान का अशेष कृपा है, इसलिए आप लोग मेरे से मिले हो। बोला आपका कृपा ही, भगवान का कृपा तो नहीं जानते हो, आपका कृपा जानता हूं, और आप हम लोग हमारा विषय का दुर्भूत करो। तो उस समय महाप्रभु बहुत सारे लटा रूप गोस्वामी को दिया था, उसमें से अपना महाप्रभु ने कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु अपना कह रहे हैं कि इनका विषय इतना वैराग्य है, इन्होंने हमको लेटर दिया जो हमारा विषय से कैसे निर्मुक्त होंगे। तो उस लेटर में लिखा था पर व्यासने नारी जिस प्रकार अपना पोति रहते हुए भी कोई स्त्री दूसरा पुरुष से संग रखते हैं तो उसको उस पुरुष का चिंता सदा सर्वदा करते रहेंगे और गृह कार्य भी करते रहेगा, घर वाला को मालूम नहीं पड़ेगा। इस प्रकार इनका मन जो है कहां पर है? भगवान पे है, और फिर भी राजकार्य करते रहते हैं, इस प्रकार भक्त मिलेगा नहीं। तो उन्होंने कहा जाओ नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करो, फिर अयोध्या आचार्य को प्रणाम करो, क्योंकि वो दोनों भक्ति का भंडारी है। इन्होंने अगर आशीर्वाद किया तो आपको भक्ति लाभ हो जाएगा, नहीं तो भक्ति नहीं मिलेगा। क्योंकि गौर सुंदर का कृपा प्राप्त अगर किसी को करना है तो नित्यानंद का कृपा प्राप्त करना पड़ेगा। नित्यानंद का कृपा अगर ना हो तो गौर का कृपा नहीं होगा। तो रूप सनातन का ऊपर कृपा क्या नित्यानंद, जीव गोस्वामी पाद के ऊपर कृपा क्या नित्यानंद, रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर कृपा क्या नित्यानंद। निताय का कृपा होने से गौर सुंदर मिलता है, और नित्यानंद कृपा कैसे मिलेगा? हमारे किनियाल बोल गौर हरि। नित्यानंद प्रभु गांव में बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अगर हमको कोई खरीद करना चाहते हो तो आप लोग गौर हरि बोलो, आप लोग अगर गौर हरि बोलोगे तो मैं आपका हूं। अगर नित्यानंद कृपा प्राप्त करना तो क्या बोलना पड़ेगा? सचिनंदन गौर हरि की। तो नित्यानंद कृपा मिलेगा, आज जो नित्यानंद कृपा मिलेगा तब सचिनंदन का कृपा मिलेगा, तो कितना अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। गौर हरि करते जाएंगे नित्यानंद कृपा मिलते जाएगा, कि नित्यानंद कृपा मिलते जाएगा तो गौर हरि कृपा मिलते जाएगा अंगांगी। यही रूप गोस्वामी जब महाप्रभु वहां रहे तब लास्ट में सनातन गोस्वामी पहले क्या वृंदावन जाई बारे नहे परिपाटी जहां संगे है लोक लक्षो कोटि, जहां पर लाखों करोड़ों लोग है ये वृंदावन जाने का रीति नहीं है। हम लोग वृंदावन जाते क्या करते हैं? टूर करते हैं ना, 500, 1000, 2000, 4000, 10000 वृंदावन जा रहे हैं टूर करके, कुछ नहीं मिलेगा। वृंदावन जाइवारे न है, वृंदावन जाओ अकेला, नहीं तो साथ में आए शांति से दर्शन करो, प्रणाम करो, सब हो जाएगा। नहीं तो पानी का बोतल खरीद करते करते दिन बीत जाएगा, वृंदावन दर्शन क्या करेगा। महाप्रभु जब ये बात कहा तो महाप्रभु बोला अरे वृंदावन नहीं जाएगा, चलो रिटर्न नीलाचल। तो महाप्रभु नीलाचल चला गया। इधर रूप गोस्वामी उन्होंने अपना इसको छोड़ने के लिए बोला हम अभी नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी शाम रिटायर कर देते हैं, और जो भी धन मिला था उन्होंने उसको बांट दिया। विषयीर होते दूरे सदा रहे कृष्ण। विषयी व्यक्ति, विषय किया किसे कहते हैं, जो धन उपार्जन में लगा हुआ है। बोले हम तो गृहस्थ भक्त है, अगर धन उपार्जन नहीं करेंगे तो हमारा पत्नी हमारा बच्चा क्या खाएगा, अब स्कूल भी कितना हो गया, दो चार दिन पहले प्याज का भाव कितना 100 रुपया किलो, लोग दिल्ली में धमाल मचा रहा है। बोले खाने के लिए तो हमको पैसा चाहिए ना, तो हमको नौकरी तो करना पड़ेगा, वास्तव में नौकरी करना पड़ेगा। महाप्रभु ने कहा गृहस्थ हो या यदि ना करो संचय कैमने हो तुम्हारे कुटुंब भरण, अगर गृहस्थों के संचय नहीं करोगे तुम्हारा संसार कैसे चलेगा, है कि नहीं। तो गृहस्थों का संचय करना आवश्यक है, किस प्रकार संचय करे। और फिर महाप्रभु के बोलते विश्व जी गृहस्थ अगर संचय ज्यादा करे उच्चा हर प्रयास विवेक दोष आ जाता है। एक हर जगह में हर वस्तु को काटने के लिए रखा हुआ है, तो क्या करेगा गृहस्थ, पैसा तो बहुत कमा रहा है तो भक्त कैसे बनेगा, उसके लिए भक्त नहीं बना जा सकता है। तो बोले बोले बाबा हम तो भक्त नहीं बनेंगे तो कैसे चलेगा। तो शास्त्र ने कहा भक्त बन सकते हो अगर आधा पैसा मंदिर में दे दो, आप जितना कमा रहे हो उसका 50% भक्त भगवान का सेवा में अगर आप दान करते हो तो आप डिवोटी बन जाओगे, अगर नहीं करते हो तो सोचना पड़ेगा। तो शास्त्र का नीति हम क्या कहेंगे, क्या विषय में जिसका निष्ठा है उसको हरि निष्ठा हो नहीं सकता है, और श्री हरि में जिसका निष्ठा है उसको विषय निष्ठा हो नहीं सकता है। तो रूप गोस्वामी पाद का निष्ठा भगवान में महाप्रभु में हो गया, तो उन्होंने नौकरी छोड़ के आधा का आधा संपत्ति भगवत सेवा में छोड़ दिया, और आधा वहां पर रख करके चुपचाप अपना कॉपी खांचा और बाहर निकल गया। अभी विषय का चिंता नहीं है, क्या खाएंगे क्या पीनेंगे क्या करेंगे, नो टेंशन। इसका दूर का चीज अगर समझना है तो हमारे लिए फॉलो होता है, गृह तक गया मतलब तक गया, उसके बाद घर से कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर हम घर को संपर्क रखते हैं तो हम भक्त कभी नहीं बन पाएंगे। माया बड़ो बलवान, थोड़ा इंकिले करता हूं उसमें क्या है, थोड़ा इंकिले कर रहा ना, हमारा माँ बाप तो है ना, हाँ ऐसे करते करते जाएंगे पर लास्ट में हम भी दूसरा किसी को माँ बाप बन जाएंगे, टेंशन नहीं रहेगा, तुरंत बन जाएंगे। इसलिए विषय और विषय से दूर रहना चाहिए, अगर उससे दूर नहीं रह पाएंगे तो हम भी एक दिन विषय देखकर विषय देख करके हमारा भी लालच हो जाएगा। रूप गोस्वामी पाद ने अपना सब कुछ त्याग करके पता किया ये महाप्रभु किधर है, तो महाप्रभु द्वितीय बार जब नीलाचल ये अपना वृंदावन जा रहे थे तो प्रयाग में आकर रुके थे, तो प्रयाग में आकर रूप गोस्वामी के साथ मिलन हुआ। तो उस समय वल्लभ भट्ट जो पुष्टि मार्ग का आचार्य है, वल्लभाचार्य जिसे पुष्टि मार्ग से महाप्रभु कहते हैं, पुष्टि मार्ग जितना सारे हैं उनको महाप्रभु कहते हैं, वल्लभ उस समय नाम था उसको वल्लभ भट्ट, उनका गांव था अड़ाइलिया, वो प्रयाग से गंगा क्रॉस करके जाना पड़ता था। उस समय दोनों भाई रूप गोस्वामी और अनुपम उनका छोटा भाई, तो दोनों आए तो महाप्रभु को जो आपकी दंडवत प्रणाम किया, नमो महावदान्नायक कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव तिशे नमः, इस श्लोक के द्वारा महाप्रभु को प्रणाम किया। महाप्रभु दोनों भाई को उठा के आलिंगन किया। जब महाप्रभु ये दोनों भाई वल्लभ भट्ट को प्रणाम करने, वल्लभ भट्ट संभ्रांत ब्राह्मण है, उनको जब प्रणाम करने जा रहे थे तो उन्होंने उसको आलिंगन करने जा रहे हैं, तब ये दोनों भाई बोला नहीं हमको मत छो, हमको मत छो, हम अस्पृश्य है, हम आपको पर्सनल एक्ट नहीं, आप ब्राह्मणों में निज जाति का हूं। तो दोनों का दोनों देख तो महाप्रभु खुश हो गया। तब वल्लभ भट्ट ने क्या बोला, दुहार मुखे जब सुने कृष्ण नाम, जिसका मुंह से कृष्ण का नाम उच्चारण वो अस्पृश्य नहीं हो सकता है, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है ना जो कृष्ण नाम उच्चारण क्यों करेगा। तो ये सिद्धांत तो जब वल्लभ भट्ट ने कहा तब महाप्रभु खुश हो गया। तब उन्होंने बोला प्रभु आप हमारे घर में जाकर भिक्षा कीजिए। तो तीनों को दोनों को साथ में लेकर के महाप्रभु को जमुना पार है करके आराज ग्राम में आया और वहां उनको प्रसाद सेवन किया। वहां पर रघुपति उपाध्याय से मिलन हुआ, जहां पर वो चार पाद का श्लोक को उच्चारण किया। तो बहुत सारा स्टोरी है जो जाने इतना सब बोलने जाएगा तो भगवान जाने कितना टाइम लगेगा। तो वहां आने के बाद उन्होंने रूप गोस्वामी को 10 दिन वहां पर भक्ति शिक्षा प्रदान किया। ब्रह्मांड भ्रमिदे कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। ब्रह्मांड भ्रमण करते करते कोई भाग्यवान व्यक्ति कोई गुरु व कृष्ण का कृपा से भक्ति लता का बीच मिलता है। जीवे साक्षात नहीं तते अंतर्जामी रूपे, भगवान जीव का ऊपर साक्षात्कार नहीं होता है लेकिन अंतर्जामी रूप में साक्षात्कार करते हैं। सिखाए आपने अंतर्जामी ददामी बुद्धि जोगों तंग जनव मामो पयाम देते। अगर जीव भगवान को प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं तो भगवान अंतर्जामी रूप में उसको वो रास्ता बताते हैं कि कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। जब तक व्यक्ति दीक्षा लेने से पहले हरिनाम का उच्चारण करता है तो हरिनाम क्या काम करता है, उस हरिनाम उसको गुरु का प्रकाश में ले जाने के लिए सहायक बनता है। ये हरिनाम दीक्षा का पहले, क्योंकि जब तक दीक्षा लेकर हरिनाम उच्चारण नहीं करेगा तब प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है। यद्यपि हरिनाम उच्चारण कार्य को वो दीक्षा लिया कि नहीं लिया ये विचार हरिनाम नहीं करता, फिर भी महाजन लोग एक शास्त्र का सिद्धांत स्थापन किया जो दीक्षा लेने के बाद ही आपको हरिनाम फल का सब करेगा। नहीं तो क्या होगा, लोग गुरु अवज्ञा रूप अपराध कर बैठेगा जो हरिनाम का चरण में अपराध है। आई सिद्धांत क्या खड़ा हुआ, विचार करो, विचार करोगे तभी मिलेगा, विचार नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सिर के ऊपर से चला जाएगा नीचे पानी के अंदर आ जाओगे। दीक्षा से पहले अगर हम हरिनाम ग्रहण नहीं करते तो हमको गुरु नहीं मिलेगा। अगर कोई कहेगा जो जब दीक्षा मिलेगा तब हरिनाम करेंगे, संभव नहीं है, आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जिसे आजकल किया ना, क्या बोलते उसको, प्ले ग्रुप, एक प्ले ग्रुप बनाया पैसा कमाने के लिए। प्ले ग्रुप में क्या होता है, बच्चा जाएगा पीछे बैग रहेगा, बैग में कुछ नहीं रहेगा, बच्चा को प्रैक्टिस करा कि इसे झोला ढूंढना है। क्यों, अभी बचपन से अगर बोझ नहीं ढोओगे तो जौवन में संसार का बोझ कैसे लेके ढूंढोगे। तो पहले से संसार का बोझ डालने के लिए बच्चा का पीछे 2.5 साल का बच्चा के पीछे लटका दिया जाता है, तुम ढो अभी से प्रैक्टिस करो। ओ एक दो साल चलते रिश्वत काम क्या, बैठेगा उठेगा, सिट डाउन गया, स्टैंड अप खड़ा हो गया, गो चला गया, बैक, यही सिखाता है प्ले ग्रुप में। तो ये हमारे जो हरिनाम है वो प्ले ग्रुप है। हमको जिस दिन से मंदिर आया उस दिन से बुक स्टॉल में जाकर के एक झोला एक माला खरीद लेना चाहिए। हम क्या खा रहा है क्या नहीं कह रहा है क्या कर रहा है नहीं कर रहा है ये विचार नहीं करने का, ये विचार बाद में आएगा। ये पहले जैसे झोला पकड़ के जाओ फिर क्या करना उधर ओस जाने का, सिट डाउन स्टैंड अप गो बैक ऐसा ही। हम भी ऐसे ही हरिनाम करते रहो। जब हम हरिनाम करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा हमारा फालतू वस्तु में और रुचि उत्पन्न होगा, रुचिकर नहीं लगा रही। अरे मेरा गला में कंठी है मैं कांदा क्यों खाऊं, लेकिन अगर नहीं नहीं मैं कांदा छोड़ूंगा फिर कंठी पकड़ूंगा संभव ना, जिंदगी में कांदा छोड़ भी नहीं पाओगे और कंठी धारण कर भी नहीं पाओगे, आपके लिए संभव नहीं है। क्योंकि पॉजिटिव को ग्रहण करोगे तब तो नेगेटिव होगा ना, आपके पास होगा तो भी तो आप दूसरा कुछ दे सकते, अगर आपके पास कुछ है नहीं तब दोगे क्या, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अनुकूल्य संकल्प पहले संकल्प स्वीकार करो फिर वर्जन करो, पातुकुल्य वर्जनम। तो आप स्वीकार ही नहीं करोगे वर्जन को, नेति 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 मायावादी सब नेति, मतलब आप मायावादी हो। तो ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। तो ये जीव कितना है अनलिमिटेड 84 लाख जीव है, एक आदमी नहीं, एक प्रजाति 84 लाख का प्रजाति जीव का है। और एक एक प्रजाति कोई कुलोर है ना, जैसे मनुष्य कितना कुलोर है 8 अरब हो गया शायद पूरा ये अपना भारत छोड़ के नहीं, भारत एशिया अमेरिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया लंदन इंग्लैंड लेकर के 8-9 अरब हो गया यहाँ पर इस पृथ्वी का चक्कर में इतना लोग हो गए। अब इसका अभी देवरोग में भी है तो एक प्रजाति करोड़ों करोड़ों है। तो 84 लाख को प्रजाति अगर गिनती जो कितना करोड़ होगा अनलिमिटेड, इतना सारे जीव है। और ये सब जीव ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित ये सब अगर विचार करेगा ना तो विचार अपना खोपी काम में आएगा कि बाप रे ये सब है। तो हम यहाँ पर आके आराम से इसको में थाली डाल के प्रसाद खा रहे हैं, हमको हरि भजन जरूर करना है। जो ये सब भाव है वस्तु को हम शरण करेंगे व चिंता करेंगे भाई इतना सारे हैं। यही जीव छंदस का क्रिया बनता है, वो कितना अच्छा जीव खाता है। और उसको जो हम ताक करते हैं उसको कोई खा के जीवन धारण करते हैं, पता है ना सुअर सुअर पिग, हम जिसको खा के छोड़ देते हैं वो उसको खा के हिष्ट पुष्ट होता है ना। यार इसको कौन खाता है, सुअर का विष्टा कौन खाता है, जिनको प्रतिष्ठा चाहिए जिस डिवोटी को प्रतिष्ठा चाहिए वो सुअर का विष्टा खाता है। प्रतिष्ठा से आशा सुकोर रिष्टा तहाना लोभिलो जुझिया रावण, दासगोस्वामी का मनोशिक्षा मिलेगा और भक्ति सिद्धांत सरे ठाकुर का वैष्णव के इसमें मिलेगा दो जाएगा में। हम जिसको ताक करते हैं वो सुअर खाता है, सुअर जिसको ताक करते हैं वो भी हम इसको पकड़ रहते हैं। इसे जो भी जिसको प्रतिष्ठा चाहिए वो सुअर को विष्ठा का शिकार करते हैं। जो उसको जैसे मालूम होगा उसको कभी प्रतिष्ठा के पीछे भागेगा नहीं भागेगा, तो जानकारी करना जरूरी होता है। इसलिए गुरुवर्ग बा जो भक्त लोग शास्त्रों को समझाते हैं, शास्त्रों बताते हैं शास्त्र क्या है, हम अपना बल बुद्धि के द्वारा पढ़ के कुछ समझ नहीं सकते हैं। हमको समझने के लिए व्यक्ति का आवश्यक जिन्होंने समझा है, इसलिए भजन शिक्षा गुरु एक आवश्यक होता है जो भजन का बारे में शिक्षा दे। आज जो भजन ही करेगा नहीं, वो भजन का बारे में क्या शिक्षा देगा? ये सब चीज को जानकारी रखना आवश्यक रहता है। ये सब जीव क्या हुआ, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच, शुश्रूषो श्रद्धा दाने वासुदेव कथा रुचि शान महत्सवाया तंत्र मंत्र निषेवना। इस लोग को यहां पर डालो आ जाएगा। सार महोत्सवाया विप्र, महोत्सवा महोत्सवा दारो विमुक्त आह, महोत् का सेवा मुक्ति का दार होता है। तुमो दारो जोशति संग संगी नाम, नरक का दार क्या होता है? स्त्री। अब स्त्री नरक का दार बोलेगा, हम लोग ये लोग अगर हम लोग नरक का दार है क्या? अगली व्याख्या किया था, स्त्री शब्द का अर्थ क्या है? जिसे हम भोग करना चाहते हैं वो स्त्री है। आकार को तो स्त्री नहीं है, ये स्त्री ये पुरुष नहीं, ये सब जीव है, लेकिन जिसको हम भोग करना चाहते हैं वो स्त्री है। अभी समझ लो स्त्री कितना है, स्त्री का कोई सीमा संख्या नहीं है, बहुत सारे स्त्री है। जिसको हम भोग करना चाहेंगे वो स्त्री होता है। ये मत समझा ये लोग स्त्री है बोला कंप्लेन कर, हम लोग स्त्री है नरक कदार है क्या? तिलोक भी तो हरि भजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तिलोक लगा कंटिन्यू हरि नाम कर रहे, तिलोक नरक कदार हो गया क्या? समझना चाहिए स्त्री किसे कहते हैं। जोशा, जिसको हम भोग करने जाएंगे वो स्त्री हो जाता है। तब अगर अच्छा अच्छा गुलाब जामुन भी खाओगे ना, उसको भी भोग करने जाओ तो गुलाब जामुन आपके लिए स्त्री हो गया। किसी वस्तु में भोग बुद्धि नहीं रखना चाहिए, जो हमें मिल जाता है संतोष। ये ब्रह्मांड भवन करते करते भाग्यवान जीव जब महोत्सवा, महोत्सवा कैसे करेगा? पेपर बहुत लोग देखते हैं, देखते हैं हम भी देखते हैं, उसमें बहुत जगह रहता है। आज फलाना जगह टूर निकला, यहां वहां जाओ, जिसका पास पैसा वो 2-2 लाख रुपया देकर के अपना सीट बुक करके निकल जाता है। वहां जाता है किसी कारणवश कोई साधु से दर्शन, जैसे आप कोई ऑस्ट्रेलिया गया, कोई किधर गया, मैं आपका ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां भी आपको हरे कृष्ण वाला हरे कृष्ण कर रहा था, मैं भी उसके साथ कीर्तन किया। अब वो 1 सेकंड के लिए किया चाहे 5 मिनट के लिए कीर्तन किया ना, वो महोत्सव हो गया उसका। बाप को उस मंदिर में गया तो वहां कुछ डोनेशन करके आए हैं, हम बोलते प्रभु जी कुछ डोनेशन देकर जाइए ना, कल मैं उधर गया था वहां गया था आपका इस्कॉन मंदिर गया था वहां मैं कुछ डोनेशन देकर आया, ये देखिए हमारे पास रसीद, वो महोत्सव हो गया ना अनिच्छाकृत। तो अनिच्छाकृत अगर महोत्सव के द्वारा ये फल मिलता है, जैसे पुतना, पुतना ने भगवान को मारने के लिए स्थान प्रदान किया, और कोई अगर कुछ इच्छा नहीं है वो अगर 1 लीटर दूध भगवान के सामने रख के चला जाए, मंदिर जा रहा हूं चला 1 लीटर दूध रख देता हूं, पुतना ने मारने के लिए दिया, इन्होंने मंदिर जा रहा खाली हाथ क्यों जाए 1 लीटर दूध रख के गया? किसी ने दूध ला के गर्म करके भगवान को भोग लगाया। तो अगर विचार करके देखो, मारने के लिए दूध देकर अगर ये फल मिलता है तो अगर प्रीति के साथ दूध दिया जाए तो क्या फल मिलेगा? ये भगवान का भगवत्ता है, ये सब महोत्सव का फल होता है। 1 मिनट 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड छोड़ दो, वहां से अगर जाते जाते ऐसा देखते हुए हाथ जोड़कर कोई व्यक्ति जाता है उसका भी उद्धार हो जाएगा। उन्होंने भगवान का एक बार देख लिया, उनका विश्वास है ना, अरे जानो कि हमको भगवान को दर्शन करके जाऊं, समझ नहीं क्या करूं, अंदर जाकर प्रणाम करके हमारे पास टाइम नहीं है, अभी जाकर लोकल पकड़ना है, तो ही खड़ा खड़ा ऐसा करके चलते चलते चला जाता है, वो भी उसके लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए कहते हैं महत् सेवाधार विमुक्त आह। ये महत् लोग क्या करते हैं, जीव को उद्धार करने के लिए मंदिर बना कर देते हैं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम साक्षात्कार कर नहीं सकते हो, तुम कम से कम कुछ भी करके हाथ जोड़ करके आकर तो जा सकते हो ना, बुरा मत मानो। बहुत सारे लोग शाम को आते हैं, जो आज रात को कुकिंग नहीं करना पड़ेगा, खिचड़ी खा के चला जाएंगे, भाव बहुत है, गैस का भाव है, दाल का भाव है, राइस का भाव है, ये भाव है, वो आता है किस उद्देश्य से? खिचड़ी खाकर शाम को कुकिंग नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो उद्देश्य क्या हो जाता है? मंदिर में तो भगवान का दर्शन हो जाता है, वो समझते नहीं है। उनका अगर थोड़ा संकल्प चेंज कर ले, आता है खाने के उद्देश्य से, अगर वो संकल्प चलो भाई भगवान का दर्शन भी हो जाए, प्रसाद भी मिल जाए, ये अगर माइंड में आ गया तो उसका उद्धार हो जाएगा। कि संकल्प अनुरूप भगवान फल देते हैं। कोई भी कार्य करना तो संकल्प करना आवश्यक रहता है। संकल्प किए बिना कोई कार्य फलपुरुष नहीं आता है। एता बाना में लोकोस्मिन पुंसो धर्म परस्थित भक्ति जोगे भगवती तन्नाम गृहिणी गृहणादी। भक्ति जोगे भगवती, अगर भक्ति भावी जो चित्त में भगवान का नाम ग्रहण नहीं करते हो तो वो नाम आपका भक्ति प्रदान नहीं करेगा। जीव गोस्वामी पाद का भक्ति संदर्भ पढ़ो और इसका वैद का सुनो। भक्ति जोगे भगवती, माला लेने से पहले हमें संकल्प करना पड़ेगा जो हमारा माला के द्वारा भगवान प्रसन्न हो। अगर ये विचार नहीं हरे कृष्ण करके जा रहे हैं तो देर हो जाएगा। वो तो भगवान का प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सोच भी चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारा सोच भी वही रह गया और माला भी हाथ में रह गया तो क्या होने वाला है, कुछ नहीं। तो हमारा सोच को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिकूल से भर जाना। जब हम माला लेंगे तो जिसमें हमारा माला के द्वारा भगवान संतोष हो, जैसे पत्नी घर में कुकिंग करता है, उद्देश्य क्या रहता है, पोतिया हमारा बच्चा खा के खुश रहेगा। पोतिया को सोचता है बनेगा जैसे बनेगा वैसे मैं खा लूं, पहले खा के अपना हिस्ट पुष्ट होकर के जब हमारा पतिदेव आएगा तो हम बिस्तर में लटा हुआ रहेंगे। पोती सोच के कुकिंग करता है क्या, पोती नौकरी में गया, बच्चा स्कूल में गया, पोती घर में कुकिंग कर रहा है, किस उद्देश्य से कर रहे हैं। हमारा संतान आएगा, हमारा पति आएगा, आके आराम से भोजन करेगा। तो अगर ये सोच के बारे चलो जो भी है जला हुआ, किसी में ज्यादा नमक डाल दिया, कोई सब्जी को जला दिया, किसी में थोड़ा मिर्ची ज्यादा डाल दिया, वो हरिनाम हो जाता है हमारा। तो क्या हमारा पति संतुष्ट होगा, क्या हमारा बच्चा संतुष्ट होगा। उसी प्रकार अगर नाम लेके किसी में नमक डालते रहेंगे, किसी में मिर्ची डालते रहेंगे, किसी में और जला देंगे तो क्या भगवान संतुष्ट होगा। तो भगवान का संतोष करने के लिए भक्ति जोगे भगवती तन्नाम ग्रहणादि। हमारा नाम के द्वारा भगवान खुश होगा इसलिए हम नाम करते हैं, ये विचार करके नाम करना चाहिए। तो हम कैसे नाम लेते, अपना भगवान खुश होगा तभी नाम होगा ना। तो भगवान को खुश करेंगे हमें कैसे नाम करना चाहिए, श्रद्धापूर्वक सुस्थिर से, तो भगवान प्रसन्न होंगे। ये सब रूप गोष्ठी बात बोलने जाओ 10 बज गया, ज्यादा बोलेंगे ना, मैं यहाँ समापन कर रहा हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास। हरे कृष्णा। हे गोविंद,
बहुत ही दो लाइन बोला, बोलने जाएगा तो काम होगा।